हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 37 एंड 38। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्यरे। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सत्यो विधिनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरात हूण द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाकसादय, ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेश्वरे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रामाणमालम् प्रेम उमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंद पहला अध्याय जिसका शीर्षक है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। इस अध्याय में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान की धारणा के विषय में बता रहे हैं कि जो भगवान के साकार स्वरूप को नहीं समझ पाते उन्हें भी भगवान को निराकार नहीं समझना चाहिए, बल्कि प्रत्येक वस्तु में भगवान के किसी अंग की कल्पना करनी चाहिए। क्योंकि एक साधारण जीव जो कि भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं समझ सकता है कि भगवान इतने छोटे होकर इस ब्रह्मांड का पालन कैसे कर सकते हैं, तो वो ये सोच सकता है कि भगवान बहुत बड़े होंगे, भगवान का स्वरूप बहुत विशाल होगा, परंतु कुछ न कुछ तो उसका स्वरूप होगा ही, तो वो कैसा स्वरूप होगा उसके विषय में यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि प्रत्येक जो लोक है, जैसे पाताल लोक भगवान के पैर हैं, ऐसे करके करके जितने भी लोक हैं वो भगवान का ही एक अंग स्वरूप है। जो पंछी हैं वो विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलते हैं, वो भगवान की व्याकरण है, मतलब भगवान का उच्चारण है। और जो जैसे उनके ऊपर एक मयूर को देख लें, एक मोर के अंदर कितने सारे कलर हैं, तो ये भगवान की कारीगरी है, भगवान की शिल्प कला है। वायु भगवान का सांस है, बादल भगवान के केश हैं, सारे जितने पशु हैं वो भगवान की कटी कमल है, और काल भगवान की गति है। तो ये सब कुछ जो भी वस्तु है उसको देखकर किस तरह से हम भगवान के ही एक अंग की कल्पना करते हैं। सूर्य को देखकर हम ये सोच सकते हैं कि भगवान के नेत्र हैं। तो और हर एक वस्तु, जैसे अश्विनी कुमार भगवान की नासिका है, अग्नि भगवान का मुख है, तो इस तरह से करते करते भगवान का चिंतन बहुत ही दृढ़ हो जाएगा। और प्रत्येक वस्तु को देखकर एक जीव ये सोच सकेगा कि हर एक वस्तु भगवान का ही एक अंग का स्वरूप है। तो भगवान की एक धारणा मन में बन जाए, इसके लिए बताएं। और आज भी बता रहे हैं श्लोक नंबर 37 में, ब्रह्माननम क्षत्रभुजो महात्मा विदुरुरंग्री श्रितकृष्णवर्णम् नानाभिधा बीजकणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वीतान योग ब्रह्माननम क्षत्रभुजो महात्मा विदुररंग्री श्रितकृष्णवर्ण नानाभिधा बीजकणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वीता न योग ब्रह्माननम क्षत्रभुजो महात्मा विदुरुरंग्री श्रितकर्म
सॉरी, ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा वीरूरुरंग्री श्रितकृष्णवर्णा नानाभिधा बीजगणो पपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वीतान योग।
ब्रह्माननम, ब्राह्मण ये जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, संसार में कहीं भी चले जाए तो ये चार वर्ण अवश्य दिखेंगे। तो ब्राह्मण के लिए का अननम, आननम का मतलब होता है मुख। जो ब्राह्मण है वो भगवान का मुख है, अर्थात जब हम ब्राह्मण को कुछ खिलाते हैं, शुद्ध ब्राह्मण जो होते हैं उनको यदि हम भोजन खिलाते तो उनके द्वारा भगवान स्वीकार करते हैं। ब्रह्माननम क्षत्र भुजो महात्मा, क्षत्रिय जो है वो भगवान की भुजाएं हैं। भुजाएं हैं मतलब जहाँ जो क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते हैं, अधर्म की रक्षा कर अधर्म का नाश करके धर्म की रक्षा करते हैं, समझो उनके द्वारा वो भगवान ही कर रहे हैं। ये क्षत्रिय जो है वो भगवान की भुजाएं हैं। और आगे का वेडुरु रंगी, वेडु यानी जो वैश्य हैं, उरु यानी भगवान की जांगे हैं, जो कार्य होता है, जो उत्पादन होता है, खेती कृषि गौरक्ष वाणिज्य, ये वैश्यों के कर्म हैं। और अंग्रिश्रित उनके चरण कमलों की छाया है। और कृष्णवर्ण यानी शूद्र जो है वो भगवान के अंग्रिश्रित भगवान के चरण है। और आगे कहा नानाभिधा, नानाभिधा यानी बहुत सारे नामों से, नानाभिधा बीज गणो पपन्नो, अभिधा बीज मतलब जितने देवता हैं, अलग अलग देवता हैं, वो सब भगवान का ही शरीर, भगवान के शरीर में ही निहित है। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो भगवान का प्रत्येक अंग है और सारे देवी देवता भी भगवान के उपपन्न शरीर में स्थित है। इसलिए क्या करना चाहिए, द्रव्यात्मक कर्म वीतानयो, इसी सब व्यक्तियों का क्या कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए द्रव्य करे, यथा संभव यज्ञ करे। द्रव्यात्मक यानी उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं हैं वो भगवान का ही शक्तियां हैं, तो द्रव्यात्मक कर्म ऐसा कर्म करें, वितान योग योग यानी यज्ञ संपन्न करें और उसी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें। क्योंकि इस भौतिक जगत में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो वस्तुएं हैं वो भगवान की हैं, जो व्यक्ति हैं वो भगवान का ही प्राकट्य हैं, भगवान का ही स्वरूप हैं, तो फिर केवल भगवान की सेवा करना एकमात्र कर्म रह जाता है। इस शास्त्र बताता है कि समय पुंसम परो धर्मो यतुर्भक्ति अधोक्षज, जो परो धर्म है वो क्या है, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। तो उस भक्ति का करना यही बता रहे हैं यहाँ पर, द्रव्यात्मक कर्म वितान योगा। हर एक जीव का यही कर्तव्य है कि भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्य करे। अनुवाद, विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जांगे वैश्य हैं, तथा शूद्र उनके चरण कमल हैं, उनके चरणों के संरक्षण में हैं। सारे पूज्य देवता उनमें ही सन्निहित हैं और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथा संभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, हम सब ध्यान से श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही मुख्य बात बता रहे हैं। वे कह रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार से एकेश्वरवाद का सुझाव रखा गया है। यद्यपि वैदिक ग्रंथों में विभिन्न नामों से अनेक देवताओं को आहुति प्रदान करने का उल्लेख है। इस श्लोक में यह सुझाव रखा गया है कि सभी देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में निहित हैं। अत्यंत ही सुंदर यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि भले ही वेदों में बताया गया हो अलग अलग देवताओं के लिए आहुति का, लेकिन यदि भगवान को प्रसन्न किया जाता है, यहाँ साफ साफ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं द्रव्यात्मक कर्म विता नहीं होगा कि उसी भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे तो फिर उनके द्वारा, क्योंकि सारे ही देवता उनके ही शरीर में निहित हैं, तो फिर किसी और को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में सुझाव रखा गया है कि सभी देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में निहित हैं, वे आदि पूर्ण के अंश मात्र हैं। इसी प्रकार वे मानव समाज के विभिन्न वर्ण यथा ब्राह्मण यानी बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय यानी प्रशासक, वैश्य यानी व्यापारिक जाति तथा शूद्र यानी श्रमिक वर्ग परमेश्वर के शरीर में सन्निहित है। अतएव इन सबों को उपलब्ध वस्तुओं से भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ की संस्तुति की गई है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसम। अब जो कुछ तपस्या करते हो, जो कोई यज्ञ करते हो, वो केवल और केवल उसका भोक्ता में हो। अगर मुझे भोक्ता मानकर आप यज्ञ करोगे तभी ज्ञात्वा मम शांति मिच्छति, क्योंकि जो भी यज्ञ होता है, जो तपस्या होता है, उसका वास्तविक करने का कारण क्या है कि हमें शांति चाहिए। क्योंकि भगवान ने कह दिया अशांतस्य कुतः सुखम, जीव यदि सुख चाहता है तो उसके जीवन में शांति होनी चाहिए। और शांति का फॉर्मूला क्या है? पीस फॉर्मूला ये है कि हम प्रत्येक वस्तु का स्वामी भगवान को समझें। तो यहाँ इसी बात को बताया जा रहा है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि परमेश्वर के शरीर में सन्निहित है सारे देवी देवता, अतएव इन सबों को उपलब्ध वस्तुओं से भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। सामान्यतः यज्ञ में घी तथा अन्न की आहुति दी जाती है। अब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यज्ञ में वैसे तो घी और अन्न दिया जाता है, किंतु समय की प्रगति के साथ मानव समाज ने ईश्वर की भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को तरह तरह के सामानों में बदल करके अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर दी हैं। अतः मानव समाज को न केवल घी से आहुति देनी सीखनी चाहिए, अभी तो भगवान के यश के प्रसार हेतु अन्य तैयार सामानों से भी आहुति देनी चाहिए। इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। ऐसे यज्ञों के लिए बुद्धिमान जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह करके निर्देश दे सकते हैं। प्रशासक एवं प्रशासक वर्ग ऐसे यज्ञों के संपन्न किए जाने की सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता है। वैश्य वर्ग या व्यापारिक जाति जो ऐसे सामान उत्पन्न करती है उसे यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं, और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस युग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है वो जो भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है, उसे मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है। कितना सुंदर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर एक वर्ग के जीव, क्योंकि वो भगवान के ही अंश हैं, भगवान का ही एक अंग का स्वरूप है, तो एक शरीर जो है या पूर्ण जो है वो तभी संतुष्ट हो सकता है जब सारे अंग उसकी सेवा करें। जैसे हमारा शरीर है, हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारे मुख, हमारे नेत्र, जब सब मिलकर सहयोग के साथ कार्य करेंगे तभी हमारा शरीर संतुष्ट होगा और हमें आनंद आएगा। उसी तरह से जितने भी वर्ग हैं वो क्योंकि भगवान का ही शरीर का एक अंग है, भगवान के अंश हैं, तो ये सब मिलकर जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे। और यज्ञ क्या है इस कलयुग में? कलयुग का एकमात्र यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो सारे वर्गों के जितने भी लोग हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, वो ऐसा कार्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, और जो क्षत्रिय हैं वो उसके लिए प्लानिंग्स करेंगे, जो शुद्ध वैश्य हैं वो वस्तुएं जुटाएंगे, उत्पादन करेंगे, और जो शूद्र है वो श्रमिक शारीरिक श्रम करेंगे। वो सब मिलके सारे वर्ण और आश्रम के लोग जब संकीर्तन यज्ञ करेंगे ना, उसी से इस मानव जाति का कल्याण संभव है। ये कलयुग में कलयुग का बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कलर दोषे निधे राजन यस्ति एको महान गुण। कलयुग में वैसे तो करोड़ों दोष हैं, परंतु एक इतना महान गुण है, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम वजेत, कि बस केवल कृष्ण का संकीर्तन, कृष्ण के नाम का संकीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र यज्ञ का केवल उच्चारण करना है। और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा क्या होगा? मुक्त संग परम व्रजेत, भौतिक जगत के जितने भी कलमश हैं, जितने भी अपराध हैं, जितनी भी दुर्वासनाएं हैं, संकट हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे और भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। तो हम सबका यही कर्तव्य है। यहाँ पर जैसे बताया गया कि क्या करना चाहिए, द्रव्यात्मकः कर्म वीतान योगा, उसी भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि भगवान के नाम से बढ़कर कोई और ज्ञान नहीं है। भगवान के पवित्र नाम से बढ़कर संसार का और कोई पावरफुल हथियार नहीं है। भगवान के नाम से बढ़कर कोई और ध्यान नहीं है। भगवान के पवित्र नाम से बढ़कर और कोई पवित्र वस्तु कोई यज्ञ नहीं है, और भगवान के पवित्र नाम से बढ़कर कोई और वैराग्य नहीं है। भगवान का पवित्र नाम ही सबसे ज्यादा महान है। इसी सबसे महान भक्ति यही है कि भगवान के पवित्र नाम में अधिक से अधिक जुड़ना है, अधिक से अधिक उच्चारण करना है, क्योंकि कोई भी और भक्ति हमें इतना ज्यादा पवित्र नहीं कर सकती, भगवान के साथ नहीं जोड़ सकती, जितना के नाम के द्वारा हम भगवान को जोड़ सकते हैं। और नाम के साथ जुड़ने का एक आसान तरीका है, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, तभी नाम के अंदर हमारी प्रीति होगी और इसी से हमारा कल्याण होगा। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक नंबर 38 में, इयान सावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते, संधार्यते स्मिन् वपुषेस्तविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्। इयान सावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते, संधार्यते स्मिन् वपुषेस्तविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित्। इयान सावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते, संधार्यते स्मिन् वपुषेस्तविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या
न यतोऽस्ति किञ्चित्।
यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। वे कह रहे हैं एयानसा ईश्वर विग्रहस्य, कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया एयान, ये सब असो, वह सब क्या है, ईश्वर विग्रहस्य, वो सब भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। यह सन्निविष्ट हो और वो सब कुछ भौतिक जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, विराट जगत का प्रत्येक वस्तु जो है वो भगवान के शरीर में ही, भगवान के ही शरीर का एक अंग है, इस तरह है कथिता, ऐसे मैंने आपको बताया है। यह सन्निविष्ट कथितो मयाते, मैंने आपको ये बताया नहीं है कि भगवान कोई निराकार है और ये भौतिक जगत जो है वो एक केवल प्राकृत पदार्थ है, नहीं, बल्कि प्राकृतिक पदार्थ में भी भगवान के अंगों की कल्पना की गई है कि भगवान के अंग हैं। अगर आपको भगवान, ये छोटा जो कृष्ण है, उसमें ना भगवान की अनुभूति नहीं होती है, तो भले आप प्राकृतिक पदार्थ में भी देखो तो भी ये ना सोचो कि ये प्राकृतिक पदार्थ है, बल्कि विराट संधारयते इसमें विपुषे स्थित स्थविष्ट, कि संधारयते एकाग्र करिए इस भौतिक वसन विपुषी, यानी भगवान के विराट स्वरूप में, स्थूल में, भले ये भौतिक प्रकृति के भौतिक वस्तुएं हैं, पर भी भगवान के स्वरूप की कल्पना करनी है, भगवान के निराकार स्वरूप की नहीं। जैसे बताया भगवान के चरण है, ये भगवान का वक्ष स्थल है, ये भगवान की जांघें हैं, ये भगवान के हाथ, तो भगवान का एक स्वरूप बताया, कहाँ बताया निराकार निर्विशेषवाद, वो सब तो एक वहम है, एक पागलपन है जो ये कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। भगवान के उस स्वरूप को नहीं समझ रहे हो तो भी भगवान का एक स्वरूप ढूंढना है, क्योंकि जब तक जिसका स्वरूप नहीं है उसके साथ संबंध जोड़ना संभव नहीं है। भगवान की प्रार्थना तो करेंगे ना, चाहे आप भगवान के साकार स्वरूप को नहीं भी मानते तो भी भगवान की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कौन सुनेगा, जिसके कान होंगे वो सुनेगा ना। अगर कान ही नहीं है, भगवान का कोई स्वरूप है ही नहीं, तो भला भगवान श्रवण कैसे करेंगे हमारी प्रार्थना को। तो यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं संधारयते इस्मिन् वपुषे स्थितिविष्टे, कि भगवान उस विराट स्वरूप में, भगवान का जो विराट स्वरूप है उसमें मन को संधारयते एकाग्र करना है। और मन स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित्, मन स्वबुद्ध्या यानी मन को उसके अंदर एकाग्र करना है और बुद्धि से ये सोचना है न यतोऽस्ति किञ्चित्, कि भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु भगवान का ही स्वरूप है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, न यतो उनसे परे अस्ति किंचित कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी मुझे आकर्षित कर रहा है, जो कुछ भी प्रेम करने योग्य लग रहा है, जो कुछ भी अडोरेबल है, वो सब भगवान का ही स्वरूप है। अगर इसमें से भगवान की शक्ति न होती तो इस जड़ पदार्थ में कोई आकर्षण न होता। तो जिस भी वस्तु को देखते हैं उसको देखकर हमें भगवान का ही चिंतन करना है, भगवान का ही स्मरण करना है। भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का भजन करना, भगवान के स्वरूप को स्वीकार करना, यही सार है वास्तव में, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। भागवत तो कहीं भी ये नहीं बताता कि भगवान निराकार है या भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। प्राकृतिक वस्तुओं में भी भगवान का ही चिंतन करने का आदेश दिया है सुखदेव गोस्वामी ने। अनुवाद देखिए कि इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया है। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक और कुछ नहीं। रूप की बात हुई है, संधारयते इस्मिन् वपुषि स्थविष्टे, कि भगवान का एक स्वरूप है, उसके अंदर अपने आप को लगाओ।
ऐसा नहीं पता है कि प्राकृतिक पदार्थ में अपने मन को लगाओ। अगर मन जा रहा है किसी प्राकृतिक पदार्थ में, भौतिक वस्तु में, तो भी यही सोचो कि भगवान के ही शरीर का, भगवान के स्वरूप का, रूप का एक अंग है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता 9.10 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भौतिक प्रकृति तो उनकी आदेश वाहक प्रतिनिधि मात्र है। भगवान क्या कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी आंख के इशारे पर यह प्रकृति चलती है। भगवान को कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है, इस भौतिक जगत के प्रत्येक कार्य, भौतिक प्रकृति की जो कार्य करती है वो केवल भगवान के इशारे पर चलती है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, वह भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक है और वह केवल उन्हीं के आदेश अनुसार कार्य करती है। परम दिव्य भगवान के रूप में वे भौतिक तत्व पर केवल दृष्टिपात करते हैं। इस तरह पदार्थ का विक्षोभ प्रारंभ होता है और परिणाम स्वरूप जो कार्य होते हैं वे क्रमशः 6 प्रकार के भेदों के रूप में प्रकट होते हैं। सारी भौतिक सृष्टि इसी प्रकार से गतिशील है और कार्यक्रम में यह प्रकट और लुप्त होते रहते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो कुछ भी भौतिक जगत में होता है उसमें 6 प्रकार का भेद होता है। पहले उत्पन्न होता है, फिर थोड़ा बढ़ता है। कुछ भी भौतिक में हम देखते हैं, कोई भी, पहले उत्पन्न होता है, उसके बाद थोड़ा बढ़ता है, अपने जैसा उत्पादन करता है, फिर कुछ समय के लिए स्टेबल होता है, उसके बाद क्षीण होता है और अंत में उसका नाश हो जाता है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, सारी भौतिक सृष्टि इसी प्रकार से गतिशील है और काल क्रम में प्रकट और लुप्त होता रहता है। दिखता है भौतिक प्रकृति में कुछ आता है, दिखता है, जैसे जीव है, मनुष्य है, पहले पैदा होता है, थोड़ा बढ़ता है, अपने जैसा उत्पादन करता है और उसके बाद थोड़े समय के लिए स्टेबल रहता है, उसके बाद क्षीण होता है और फिर मृत्यु हो जाती है, फिर वापस से होता है। तो ये सब भगवान की ही प्लानिंग से हो रहा है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जो अल्पज्ञ है वे भगवान श्री कृष्ण की उस अचिंत्य शक्ति की भावना को आत्मसात नहीं कर पाते। अब उनको ऐसा लगता है कि ये सब कृष्ण के कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान का जो कार्य है, माया जवनी का चन्नम, ये एकदम माया की तरह है। किसी को कोई इस चीज को स्वीकार करना बहुत कठिन है, तो हर कोई इस बात को नहीं, क्योंकि भगवान मनुष्य जैसे लगते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि जो अल्पज्ञ है भगवान श्री कृष्ण की इस अचिंत्य शक्ति की भावना को आत्मसात नहीं करते हैं, जिसके द्वारा वे मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। दिखने में वो मनुष्य है। श्रीमद् भगवद गीता 9.11, अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। इस संसार में हमारे ही जैसे रूप में उनका अवतरित होना भी पतित आत्माओं पर उनकी अहित की कृपा का फल है। वे समस्त भौतिक धारणाओं से ऊपर हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों पर अपनी असीम कृपा के कारण वे अवतरित होते हैं और साक्षात भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। भौतिकतावादी चिंतक तथा वैज्ञानिक परमाणु शक्ति तथा ब्रह्मांड के रूप की विराटता में ही अत्यधिक उलझे रहते हैं और इस जगत के आध्यात्मिक तात्विक सिद्धांत की उपेक्षा भौतिक प्राकट्य की घटनाओं से भरे ब्रह्म लक्षण को अधिक मान्यता देते हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये तो भगवान की अनुकंपा है हम जैसे जीवों पर, कि भगवान स्वयं, हालांकि भौतिक जगत में भगवान को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम जैसे पतित जीवों का कल्याण करने के लिए उन पर कृपा करने के लिए, अपने स्नेह को अपने भक्तों के ऊपर प्रदर्शित करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। लेकिन जो भौतिकतावादी चिंतक होते हैं उनको भगवान के स्वरूप में आकर्षण नहीं होता है, बल्कि वो भौतिक प्राकृतिक पदार्थ है जो प्राकृति है, जो घटना, उनको ज्यादा मान्यता देते हैं, भगवान के स्वरूप को मान्यता नहीं देते। क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना स्पिरिचुअल है और भगवान की जो ये भगवान का जो स्वरूप है उसको मोहयंती यत सूर्या, बड़े बड़े देवी देवता भी उसको देखकर मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा ना समझ सके, जिसको इंद्र ना समझ सके, तो ये साधारण भौतिकतावादी मतलब भगवान के स्वरूप को क्या समझेंगे। तो वो भौतिक वस्तुओं को तो महत्व देते लेकिन भगवान के स्वरूप को नहीं दे सकते। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर बात कहते हैं कि भगवान का दिव्य रूप ऐसे भौतिकतावादी कार्यकलापों की सीमा के बाहर है, वो नहीं समझ सकेंगे। और यह सोच पाना अत्यंत कठिन है कि भगवान एक ही साथ अंतर्यामी तथा सर्वव्यापी हैं, क्योंकि भौतिकतावादी चिंतक तथा वैज्ञानिक हर बात को अपने निजी अनुभव के आधार पर सोचते हैं, क्योंकि वे भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ नहीं हो पाते। अतएव भगवान सदैव होकर उन्हें अपने दिव्य रूप का विराट पहलू प्रदर्शित करते हैं। और श्री सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर भगवान के इस स्वरूप का विशद वर्णन किया है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान इतने सदया यानी दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि भगवान सोचते हैं कि वो मेरे साकार स्वरूप को तो समझ ही नहीं पाएंगे। मैं छोटा सा कृष्ण मनुष्य जैसा दिखता है, वो किस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड का नायक हो सकता है? ठीक है, वो नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, वो सदया होकर उन्हें अपने दिव्य रूप यानी विराट उसका विराट रूप प्रदर्शित करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध जो भक्त होते हैं वो उसी का वर्णन करके उन व्यक्तियों के को भी भगवान की एक धारणा प्रदान करते हैं, भगवान के स्वरूप की एक धारणा प्रदान करते हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि भगवान के इस विराट रूप के परे और कुछ भी नहीं है। कोई भी भौतिकतावादी विचारवान व्यक्ति इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा सकता। कुछ भी देखोगे, कुछ भी समझोगे, कुछ भी कहीं भी दृष्टि जाएगी तो ये सोच सकते हैं कि ये भगवान का स्वरूप है। कहाँ जाएगी दृष्टि, किसी भौतिक प्रकृति में, किसी पदार्थ में ही जाएगी ना, तो उसमें भगवान के ही स्वरूप का चिंतन करना। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भौतिकतावादी व्यक्तियों के मन चलायमान है और वे निरंतर एक पहलू से दूसरे की ओर बदलते रहते हैं। अतएव मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह उनके विराट शरीर के किसी एक अंग का चिंतन करें और केवल अपनी बुद्धि से ही भौतिक ज्ञान की किसी भी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है, यथा जंगल, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, पशु, देवता, पक्षी, प्राणी या अन्य कुछ भी। भौतिक अभिव्यक्ति की प्रत्येक वस्तु विराट रूप का कोई न कोई अंग होती है। अतएव चंचल मन भगवान पर ही स्थिर हो सकता है, अन्य किसी वस्तु को पर नहीं। भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि से आसुरी ईश्वर विहीनता यानी निरीश्वरवादी धारणा का की चुनौती क्रमशः क्षीण हो जाएगी और भगवान की भक्ति में क्रमिक विकास लिया जा सकेगा। क्योंकि प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण का अंश है, अतएव नवदीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे ईशोपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो ये बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, और इस तरह वह भगवान के शरीर के प्रति अपराध ना करने की कला सीख जाएंगे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु को यदि देखते हैं, पहाड़ हो, नदी हो, जड़ हो, चेतन हो, पशु हो, देवता हो, पक्षी हो, पानी हो, कुछ भी देखेंगे तो उसमें भगवान के एक अंग की कल्पना करते धीरे 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 उनके मन से जो निराकार या निरीश्वरवाद की जो धारणा है ना वो समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे उनका मन जो है वो भगवान के साकार रूप की ओर आकर्षित होगा, यानी भगवान की भक्ति में क्रमश उनका विकास होगा, क्योंकि हर एक वस्तु भगवान का ही अंश है। तो इससे लाभ क्या होगा? एक तो सर्व खलु इदम ब्रह्म के प्रत्येक वस्तु भगवान का ही एक अंग है, ऐसा करते करते प्रत्येक वस्तु को देखकर भगवान की अनुभूति होगी और उसके साथ साथ क्या होगा कि भगवान के शरीर के प्रति अपराध ना करने की कला सीख जाएगा जीव की। नहीं, भगवान साकार भी है तो भी भगवान कोई साधारण नहीं है। और उसके साथ साथ क्या होगा कि इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्व में हिरास होगा। वो देखेगा कि प्रत्येक वस्तु भगवान का ही अंग है तो फिर वो चुनौती नहीं देगा और उससे बढ़कर क्या होगा, इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम शरीर का की ही अंश है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल भगवान की विग्रह की ही पूजा करने से ही भक्ति होती है। प्रत्येक वस्तु में भगवान का जब अनुभव होता है, प्रत्येक वस्तु को हम जब भगवान का ही मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं, प्रत्येक वस्तु का यहाँ साफ साफ बताया सम्मान प्रदर्शित होगा प्रत्येक वस्तु में। क्यों? ये सोचकर नहीं कि वो वस्तु इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये सोचकर कि क्योंकि वो वस्तु भगवान का ही एक अंग है, भगवान का ही एक स्वरूप है, तो प्रत्येक जीव मात्र के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर हमारा सम्मान होगा। और वास्तव में यही एक तरह से ईश अनुभूति है, जो ईश अनुभूति का सोपान बताया जा रहा है कि हमें हर जगह हर समय भगवान की अनुभूति करनी है और भगवान को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हर वस्तु में भगवान है तो वस्तु का ही चिंतन कर ले। नहीं नहीं, यहाँ ऐसे नहीं बताया गया है। हर एक वस्तु में भगवान के अंगों का वर्णन किया गया है। एक एक श्लोक पर यदि विचार करें तो हमें पता चलेगा कि कितना भगवान के अंगों पर जोर दिया गया है, क्योंकि भगवान का जब तक चिंतन नहीं करेंगे प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु आनंद नहीं दे सकती। भगवान वस्तु में भी यदि भगवान के अंगों का हम चिंतन करेंगे तभी हम आनंदित हो सकेंगे, क्योंकि जीव जो है वो तब तक आनंदित हो नहीं सकता है जब तक कि भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता है। और भले ही ये प्राकृतिक वस्तु है, यहाँ पर निराकारवाद को बिल्कुल खंडित किया गया है, एक ईश्वरवाद का सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान का ही अंश है, भगवान का ही एक अंग है, तो आपको डायरेक्ट से भगवान के अंदर ही अपने मन को धारणा लगाना है, मन को एकाग्र करना है। कहाँ निर्विशेष और निराकारवाद का कोई यहाँ पर बात हो, कुछ भी नहीं, केवल भगवान के साक्षात स्वरूप को यहाँ पर हृदय में बिठाकर भगवान के साथ प्रेम करने की बात बताई गई है, क्योंकि एकमात्र यही जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और वो तभी संभव है जब हम भगवान के स्वरूप को स्वीकार करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।